एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ना फिलॉसफी को थोड़ा आम आदमी की समझ के करीब लाने की कोशिश की।
हाँ, बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी के स्कॉटिश विचारक थॉमस रीड की।
सही। और रीड इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने समय के एक बहुत बड़े, शायद सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक डेविड ह्यूम, उनके विचारों को सीधी चुनौती दी थी।
अच्छा, ह्यूम वो तो संशयवाद, स्केप्टिसिज्म के लिए जाने जाते हैं ना।
हाँ बिल्कुल। ह्यूम का दर्शन लोगों को एक गहरे संदेह में डाल रहा था। मतलब क्या हम सच में बाहरी दुनिया को जान भी सकते हैं, ये सवाल वो उठा रहे थे।
तो रीड ने क्या कहा कि भाई रुको, थोड़ा अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो, कुछ ऐसा।
हाँ हाँ, आप कह सकती हैं कुछ कुछ वैसा ही। रीड का यही मानना था कि भाई अगर दर्शन हमें उन चीजों पर शक करना सिखा रहा है जिन पर हर इंसान मतलब सहज रूप से भरोसा करता है,
जैसे
कि ये दुनिया सचमुच है, ये मेज मेरे सामने है तो ये सच में है, अगर दर्शन इस पर शक करवा रहा है तो रीड के हिसाब से वो दर्शन कहीं ना कहीं रास्ता भटक गया है।
दिलचस्प। तो आज हम रीड के जीवन, उनके ये कॉमन सेंस वाले विचार, इन सब पर गहराई से बात करेंगे।
हाँ, और ये पूरी चर्चा रीड पर जो जानकारी उपलब्ध है उसी पर आधारित होगी। देखेंगे कि उनके आइडियाज आज भी क्यों जरूरी लगते हैं।
चलिए तो शुरू करते हैं उस जमाने से, 18वीं सदी का स्कॉटलैंड। कैसा था वो दौर, माहौल क्या था?
वो स्कॉटिश ज्ञानोदय का दौर था। मतलब रफली समझ लीजिए 1750 से 1840 के आसपास का समय। स्कॉटलैंड उस वक्त विचारों का, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का एक बड़ा हब बना हुआ था।
मैंने सुना है एडिनबर्ग को उत्तर का एथेंस भी कहते थे।
बिल्कुल सही कहते थे। फिलॉसफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हर तरफ नए नए आइडियाज आ रहे थे। लोग इंसानी स्वभाव कैसा है, हम क्या जान सकते हैं क्या नहीं, नैतिकता क्या है, इन सब पर खूब बहसें होती थीं।
और इसी माहौल में डेविड ह्यूम जैसे बड़े विचारक भी थे, तो ह्यूम का रीड पर असर काफी गहरा रहा होगा फिर।
बहुत गहरा, लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसा आप सोच रही हैं। ये असर एक चुनौती के रूप में था। ह्यूम एक एम्पिरिसिस्ट थे, मतलब वो मानते थे कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव, एक्सपीरियंस से आता है।
हाँ, ये तो फिलॉसफी की बेसिक बात है।
सही। पर ह्यूम इसी तर्क को आगे ले जाते ले जाते ऐसे नतीजों पर पहुंचे जो बहुत रेडिकल थे। उन्होंने कहा कि हम पक्के तौर पर ये भी नहीं कह सकते कि ये बाहरी दुनिया असल में है या नहीं।
क्या बात कर रहे हैं।
हाँ, या ये कि एक चीज दूसरी चीज का कारण बनती है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। वो कहते थे हमें तो बस अपनी इंद्रियों से कुछ इंप्रेशंस मिलते हैं, कुछ आइडियाज या छवियां मिलती हैं, बस। तो यहीं रीड को लगा कि भाई ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। ह्यूम की एक बहुत मशहूर किताब है, ए ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। उसे पढ़ने के बाद रीड ने कहा कि इस किताब ने उन्हें उनकी डॉगमैटिक नींद से जगा दिया, मतलब जो मान कर बैठे थे उससे वो हिल गए।
लेकिन उन्होंने ह्यूम की बात मानी नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तय किया कि वो इसका जवाब देंगे। यहीं से उनके अपने दर्शन की एक तरह से शुरुआत हुई।
अच्छा, तो रीड की जिंदगी के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से थे, कैसे पढ़े लिखे।
रीड का जन्म 1710 में स्कॉटलैंड में ही हुआ था, स्ट्रैचन नाम की जगह पर। उनके पिता एक पादरी थे, तो पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में वो कॉलेज चले गए थे।
12 साल में?
हाँ, मैरिस्टल कॉलेज एबरडीन में। शुरू में उन्होंने धर्मशास्त्र ही पढ़ा था, लेकिन फिर ह्यूम की किताब पढ़ी और यू नो रास्ता बदल गया। बाद में वो कुछ समय पादरी भी रहे, फिर किंग्स कॉलेज एबरडीन में प्रोफेसर बने, और उसके बाद ग्लासगो यूनिवर्सिटी में मॉरल फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। वहां उन्होंने एडम स्मिथ की जगह ली थी।
एडम स्मिथ? अच्छा।
हाँ, और वो एक फिलोसॉफिकल सोसाइटी वाइज क्लब के फाउंडिंग मेंबर भी थे। उसमें उस दौर के कई बड़े स्कॉटिश विचारक शामिल थे।
ठीक है, तो अब आते हैं उनके विचारों पर। ह्यूम के संशयवाद का मुकाबला उन्होंने कैसे किया, क्या था उनका मेन आइडिया?
उनका मेन हथियार था, जैसा आपने कहा, कॉमन सेंस। और इसी से जुड़ा एक और विचार था, प्रत्यक्ष यथार्थवाद या डायरेक्ट रियलिज्म। उनकी पहली और सबसे फेमस किताब 1764 में आई, एन इंक्वायरी इनटू द ह्यूमन माइंड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन सेंस, वो इसी बारे में थी।
डायरेक्ट रियलिज्म, ये क्या है? सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है।
नहीं, इसका आइडिया बहुत सीधा है। रीड ने कहा कि जब हम दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं तो हम सीधे चीजों को ही जानते हैं।
सीधे चीजों को मतलब?
मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में पहले उस चीज की कोई तस्वीर या कोई आइडिया बनता है और हम बस उस तस्वीर को देख रहे होते हैं। नहीं, रीड कहते हैं। अगर आप सामने सेब देख रहे हैं तो आप सीधे उस असली सेब को ही जान रहे हैं।
अच्छा, ये तो उस सोच से एकदम अलग है जो कहती थी कि हम तो सिर्फ अपने मन के आइडियाज को ही जानते हैं, बाहरी चीजों को सीधे नहीं जान सकते।
बिल्कुल, लॉक, बर्कले, ह्यूम, ये सब कहीं ना कहीं ये मानते थे कि हमारे मन और बाहरी दुनिया के बीच में एक तरह का पर्दा है, आइडियाज का, मेंटल इमेजेस का। हम दुनिया को सीधे नहीं, उन इमेजेस के जरिए जानते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशनिज्म कहते हैं। रीड ने कहा कि भाई, यही सोच तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर हम सिर्फ अपने आइडियाज को जानते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो आइडियाज असली दुनिया जैसे हैं भी या नहीं? यही से तो शक, स्केप्टिसिज्म पैदा होता है।
सही बात है।
रीड के लिए हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस, दुनिया के लिए खुली खिड़कियां हैं, कोई स्क्रीन नहीं जिस पर दुनिया की फिल्म चल रही हो।
ये तो वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। और वो कॉमन सेंस के सिद्धांत क्या थे जिन पर वो इतना जोर देते थे?
रीड ने कहा कि कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं, कुछ बुनियादी विश्वास हैं जिन पर हम सब बिना किसी सबूत के भरोसा करते हैं और करना भी चाहिए।
जैसे कि?
जैसे ये बाहरी दुनिया सच में है, दूसरे लोगों के भी मन है, वो भी हमारी तरह सोचते महसूसते हैं। हमारी याददाश्त, हाँ, थोड़ी बहुत भूल चूक हो सकती है, पर मोटे तौर पर भरोसे लायक है। हम जो कल थे वही आज भी हैं। हमारी एक पहचान है जो बनी रहती है।
ये तो ऐसी बातें हैं जिन पर हम शायद कभी सवाल उठाते भी नहीं।
बिल्कुल। और रीड कहते हैं कि इन पर सवाल उठाना या इनका सबूत मांगना ही गलत है। ये तो वो बुनियाद है जिन पर हमारा सारा तर्क, सारा ज्ञान टिका हुआ है। आप इन्हें मानव स्वभाव के स्वयं सिद्ध, मतलब एक्सियम्स मान सकते हैं। इन्हें साबित करने की जरूरत नहीं, ये खुद सबूत का आधार है।
यानी फिलॉसफी को हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर रहना चाहिए, आम इंसान की समझ के साथ।
सही कहा। उन्होंने बाद में और भी किताबें लिखी। 1785 में आई एसेज ऑन द इंटेलेक्चुअल पावर्स ऑफ मैन। इसमें उन्होंने हमारी सोचने समझने की ताकतों, जैसे परसेप्शन, मेमोरी, रीजन, इनका विश्लेषण किया और बताया कि ये भरोसेमंद हैं।
अच्छा।
और फिर 1788 में आई एसेज ऑन द एक्टिव पावर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। इसमें उन्होंने नैतिकता और फ्री विल, यानी इच्छा स्वतंत्र की बात की। उन्होंने कहा कि नैतिक सच्चाइयां होती हैं, वो सिर्फ हमारी राय नहीं होती, और हम अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हमारे पास चुनने की आजादी है।
तो अगर हम रीड के योगदान को देखें तो सबसे बड़ा तो यही हुआ कि उन्होंने ह्यूम के संशयवाद का एक मजबूत जवाब दिया।
हाँ, एक सिस्टमैटिक जवाब दिया, और परसेप्शन को समझने का एक नया तरीका दिया उन्होंने। सेंसेशन यानी सनसनी और परसेप्शन यानी धारणा में फर्क किया।
वो क्या फर्क था?
सेंसेशन है एक अंदरूनी एहसास, जैसे आपको लाल रंग दिख रहा है, वो सेंसेशन है। पर परसेप्शन है उस एहसास के जरिए बाहरी चीज को जानना, ये जानना कि सामने एक लाल सेब है।
अच्छा।
और ये परसेप्शन, ये जानना रीड के हिसाब से डायरेक्ट होता है। इसमें बीच में किसी आइडिया की जरूरत नहीं पड़ती। ये ह्यूम से बिल्कुल अलग था। ह्यूम के लिए तो बस सेंसेशंस की एक धारा बह रही है, रीड के लिए हमें सीधे चीजों का अनुभव हो रहा है।
और अगर हम उनकी तुलना कांट से करें, इमानुएल कांट, वो भी तो ह्यूम से बहुत प्रभावित थे।
हाँ, दोनों ही ह्यूम की चुनौती से जूझ रहे थे, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। कांट ने माना कि हाँ, हम दुनिया को सीधे नहीं जानते, बल्कि हमारा मन ही अपनी कैटेगरीज से, अपने ढांचों से ज्ञान को संभव बनाता है, जिसे वो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म करते हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। रीड का रास्ता ज्यादा सीधा था। उन्होंने कहा, भाई, हमें अपनी जो स्वाभाविक क्षमताएं मिली है उन पर भरोसा करना चाहिए। हमारा दिमाग दुनिया को जानने के लिए ही बनाए। और लॉक और बर्कले का जो आइडियाज का सिद्धांत था, उसे तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्हें लगता था कि वही संशयवाद की जड़ है।
तो रीड के विचारों का असर कैसा रहा उस वक्त? क्या लोगों ने उनकी बातें मानी?
अरे, अपने समय में और 19वीं सदी में तो रीड बहुत प्रभावशाली थे। स्कॉटलैंड में तो उनका एक पूरा कॉमन सेंस स्कूल ऑफ फिलॉसफी बन गया था। डुगाल स्टीवर्ट जैसे विचारक उनके फॉलोअर थे।
अच्छा।
और सिर्फ स्कॉटलैंड में ही नहीं, फ्रांस में और खासकर अमेरिका में उनका बहुत ज्यादा असर था। कहते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के समय के कई विचारकों पर और अमेरिकी कॉलेजों में लंबे समय तक रीड का दर्शन ही पढ़ाया जाता था।
ये तो बड़ी बात है, लेकिन क्या आज भी कोई रीड को पढ़ता है? मतलब आज के जमाने में उनकी क्या रेलेवेंस है?
हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि 20वीं सदी के आखिर में फिलॉसफर्स की दिलचस्पी रीड में दोबारा जागी। आज भी एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान के सिद्धांत और फिलॉसफी ऑफ माइंड में उनके डायरेक्ट रियलिज्म पर खूब बहस होती है।
सच में?
हाँ, और कुछ आधुनिक धार्मिक दार्शनिक हैं जैसे एल्विन प्लांटिंगा, जिन्होंने रिफॉर्म्ड एपिस्टेमोलॉजी नाम का एक सिद्धांत दिया है। वो कुछ हद तक रीड के इस आइडिया से प्रेरणा लेता है कि कुछ बुनियादी विश्वासों को बिना सबूत के मानना भी तर्कसंगत हो सकता है। तो हाँ, वो आज भी प्रासंगिक हैं।
उनके कुछ फेमस कोट्स भी होंगे जो उनके विचारों को पकड़ते हों।
बिल्कुल, परसेप्शन पर उनका एक बहुत सीधा साधा कोट है, इंद्रियों का प्रमाण जब उचित परिस्थितियां हों अच्छा प्रमाण है और हम सुरक्षित रूप से इस पर भरोसा कर सकते हैं। ये सीधे सीधे स्केप्टिसिज्म पर हमला है।
हाँ बिल्कुल, साफ बात। और एक वो कोट जो थोड़ा ड्रामेटिक सा लगता है, मैं दर्शन को तुच्छ समझता हूँ, मेरी आत्मा सामान्य ज्ञान के साथ रहे।
हाँ, वो उनकी पहली किताब इंक्वायरी से है। वो थोड़ा रिटोरिकल है जाहिर है, लेकिन वो दिखाता है कि वो उस फिलॉसफी से कितने फ्रस्ट्रेटेड थे जो आम अनुभव के बिल्कुल खिलाफ जाती हो। उनका एक और फेमस कोट है, आधे अधूरे दार्शनिक से बड़ा कोई संशयवादी नहीं होता।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि जो दार्शनिक कॉमन सेंस को इग्नोर करते हैं, वो असल में पूरी सूरत देख ही नहीं पा रहे, वो आधे अधूरे हैं।
और एक वो आइडियाज का सिद्धांत वाला कोट भी था, ट्रोजन हॉर्स जैसा।
हाँ, वो कमाल का मेटाफर है, विचारों का सिद्धांत ट्रोजन हॉर्स की तरह। अगर हम इसे अपने गढ़ में स्वीकार करते हैं तो ये हमारे विनाश की योजना बनाता है। उनका मानना था कि जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आप दुनिया को नहीं सिर्फ अपने मन के विचारों को जानते हैं, आप स्केप्टिसिज्म के जाल में फंस जाते हैं। विनाश पक्का है।
जाहिर है, जब कोई इतने बड़े विचारों को चुनौती देगा तो उसकी आलोचना भी हुई होगी। क्या कहा गया रीड के खिलाफ?
सबसे कॉमन आलोचना तो यही थी कि भाई, कॉमन सेंस पर भरोसा करना कौन सी फिलॉसफी हुई, ये तो मुश्किल सवालों से भागना है। कांट जैसे बड़े फिलॉसफर्स ने भी कहा कि ये तो डॉगमेटिज्म है, मतलब बिना सोचे समझे बस मान लेना, हट धर्मिता।
और क्या ये साफ था कि कौन सी बातें कॉमन सेंस है और कौन सी नहीं? क्या इसका कोई क्राइटेरिया था?
ये दूसरी बड़ी आलोचना थी कि रीड ने कोई क्लियर तरीका नहीं बताया कि हम कैसे तय करें कि फलाना विश्वास सच में कॉमन सेंस का हिस्सा है या सिर्फ हमारी आदत या हमारा कल्चरल बायस है। उन पर यह भी आरोप लगा कि उनका दर्शन थोड़ा कंजर्वेटिव है, जो स्टेटस को यानी मौजूदा विश्वासों को बनाए रखने पर ज्यादा जोर देता है, उन्हें चैलेंज करने पर कम।
और आज के नजरिए से देखें तो जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, क्या रीड का डायरेक्ट रियलिज्म इसे समझा पाता है?
ये बहुत अहम सवाल है। आधुनिक साइकोलॉजी हमें बताती है कि देखना या सुनना सिर्फ एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, हमारा दिमाग उसमें एक्टिव रोल निभाता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है। तो क्या दुनिया की एकदम सीधी अनफिल्टर्ड पकड़ मुमकिन है जैसा रीड मानते थे? ये आज भी डिबेट का विषय है।
रीड के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, मैंने सुना ह्यूम के साथ उनके रिश्ते बड़े दिलचस्प थे।
हाँ, ये वाकई कमाल की बात है, दोनों के विचारों में इतना फर्क था लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत थी। उन्होंने चिट्ठी पत्री भी की, और हद तो ये है कि ह्यूम ने रीड की पहली किताब छपवाने में मदद की थी, वो किताब जो ह्यूम की ही आलोचना कर रही थी।
वाह, ये तो सच में कमाल है, उस दौर की बौद्धिक ईमानदारी दिखाता है।
बिल्कुल, और रीड सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, वो एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, नेचुरल साइंसेज में भी इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को इम्प्रूव करने में भी योगदान दिया।
अच्छा?
और उन्हें एक बेहतरीन टीचर माना जाता था, मुश्किल आइडियाज को भी आसानी से समझा देते थे। और एक आखिरी बात, उन्होंने अपने पहली बड़ी फिलोसफिकल किताब 54 साल की उम्र में पब्लिश की थी।
देर आए दुरुस्त आए।
हाँ, कह सकते हैं, ये दिखाता है कि गहरे विचार किसी भी उम्र में आ सकते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? थॉमस रीड को हम कैसे याद रखें?
देखिए, थॉमस रीड को हम आधुनिक दर्शन में कॉमन सेंस के, हमारी सहज बुद्धि के एक महान डिफेंडर के तौर पर याद रख सकते हैं। उन्होंने उस स्केप्टिसिज्म को चुनौती दी जो हमें अपनी ही समझ पर शक करना सिखा रहा था। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया को जानना, दूसरे लोगों को समझना, खुद को पहचानना, ये हमारी बेसिक क्षमताएं हैं और इन पर भरोसा करना ही ज्ञान की शुरुआत है। उनका डायरेक्ट रियलिज्म फिलॉसफी को वापस जमीन पर आम जिंदगी के करीब लाने की एक कोशिश थी।
और आज के लिए उनका मैसेज क्या है?
उनका काम हमें ये याद दिलाता है कि फिलॉसफी को आम इंसानी जिंदगी से कटना नहीं चाहिए। जो सिद्धांत हमें हमारे सबसे बुनियादी अनुभवों पर, हमारी अपनी समझ पर शक करना सिखाते हैं, उन पर सवाल उठाना जरूरी है। वो हमें अपनी इंट्यूशन और रीजन दोनों का सम्मान करना सिखाते हैं।
तो अंत में हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं।
जरूर, आज की दुनिया देखिए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हर तरफ एक्सपर्ट्स हैं, डेटा है, एनालिसिस है, और अक्सर होता है कि एक्सपर्ट्स की राय हमारे अपने अनुभव या हमारे गट फीलिंग से अलग होती है।
हाँ, ये तो रोज होता है।
तो सवाल ये है कि ऐसे में क्या रीड का कॉमन सेंस पर जोर देना आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है? क्या हमें अपनी अंदरूनी आवाज, अपनी सहज समझ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? या फिर कहीं ये कॉमन सेंस ही हमें उन कॉम्प्लेक्स सच्चाइयों को समझने से रोक तो नहीं रहा जिनका सामना करना आज जरूरी है? सोचने वाली बात है कि हम अपने विश्वासों की नींव कहां रखें, अपनी सहज समझ में या बाहरी विश्लेषण में, या शायद दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।